आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। विजय जी नमस्कार।
नमस्कार
विजय जी, आपकी एक किताब है क्विट डोंट जस्ट सिट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए जैसे एक चेतावनी है, क्योंकि ये किताब मैनेजमेंट जॉनरा के अंदर है।
हाँ जी।
तो पहले बात एम्प्लॉई की करते हैं कि ऐसा क्या होने लगे कि वो नौकरी छोड़ें, उनको ये चेतावनी क्यों और कब?
क्या है कि आजकल जो एम्प्लॉयज हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर तक उसे भी कह सकता हूँ
जी,
एक जनरेशन चेंज हो रही है
जी,
उसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती जा रही हैं। पहले 40s में जो जनरेशन थी उनकी रिक्वायरमेंट कुछ थी, उसके बाद में कुछ एक जनरेशन आई 60s में, अब जो जनरेशन है जिसको हम मिलेनियल्स कह रहे हैं, जो जॉब्स में एक्चुअली हैं,
राइट,
देयर रिक्वायरमेंट्स हैव टोटली चेंज फ्रॉम दैट ओल्ड सिक्योर टाइप ऑफ जॉब्स। पहले सबके पास एक फीलिंग थी कि एक चीज ही हमारे पास हो, उसी को लेके चलें, वो लाइफ लॉन्ग हमारी पोजेशन होती है, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारे पास कोई कार हो, चाहे हमारे पास एक घर हो, एनीथिंग दैट वाज जस्ट वन एंड दैट वाज अ सिक्योर टाइप ऑफ थिंकिंग। लेकिन जैसे जनरेशनल चेंजेस हुए हैं और टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया है
जी,
वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज हुए हैं और आज की जनरेशन जो है वो चाहती है कि हमें सब कुछ एक बहुत ही सही तरीके से बहुत जल्दी मिले, क्योंकि सब एनालाइज कर सकते हैं आजकल, इंफॉर्मेशन फ्लो इतना है, इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है कि सबको ऑलमोस्ट सब चीज पता है और कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया
जी,
और वो एसेस करने लग गए हैं बहुत डिटेल में कि मैं जहां पे भी काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए कैसी जगह है, मेरे को फ्यूचर में कहाँ पहुंचाएगी, मैं बहुत जल्दी राइज करूं, मुझे पूरा करियर दिखना चाहिए
जी,
वो एसेस करने लग गए हैं बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर
जी। आपने कहा कि बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर, तो
हाँ जी,
वो
हाँ
पैरामीटर्स क्या हैं, मतलब वो क्यों छोड़ दें?
हाँ, करीब 14-15 पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है वर्क स्ट्रेस। आजकल एक वर्क स्ट्रेस भी इंक्रीज हुआ है लोगों का और जिससे हेल्थ इफेक्ट होने लग जाती है। पहला रीजन यही होता है कि जो नौकरी कर रहा है वो देखता है कि मेरी हेल्थ इससे इफेक्ट हो रही है, तो ही ट्राइज टू लुक फॉर समथिंग एल्स। सेकेंड रीजन जो बहुत मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कि यू डोंट लाइक योर बॉस। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो ये कहती हैं कि लोग जॉब्स नहीं छोड़ते, अपने बॉसेस को छोड़ते हैं, क्योंकि या बॉस आपको ट्रस्ट नहीं करता, या आपको मोटिवेट नहीं करता, या आपको रिवॉर्ड नहीं करता अच्छे काम के लिए
जी।
बॉस अनफेयर है, अनएथिकल है, डिसऑनेस्ट है। आज तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है यंग जनरेशन में इन सब चीजों की
जी।
बॉस डिफिकल्ट है, अनअप्रोचेबल है, और या ओवरलोडिंग करता है वर्क से। ओवरलोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज की सिचुएशन में, आज के टाइम में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सबके लिए। तो जहां वो देखता है कि मेरे पास अनड्यूली कोई वर्क मेरे पास आया है जो बहुत मुझे ओवरलोड कर रहा है, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस इफेक्ट हो रहा है, तो वो सोचने लगता है कि भाई शायद ये मेरे लिए जॉब सही नहीं। दूसरा कि कंपनी में उसको लगता है कि गलत लोग हायर करे जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रमोशन गलत लोगों को हो रहा है, शायद मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक, ये रीजन है
जी।
दूसरा कंपनी की अपनी विजन और मिशन वो क्लियर नहीं है। एक टाइम था जब लोगों को मालूम नहीं था कि मिशन और विजन ये होता क्या है, आज सब एम्प्लॉयज को अवेयरनेस है कंपनी का विजन क्या, कंपनी कहाँ अपने आप को फ्यूचर में देखती है और मिशन कंपनी के क्या है, उस विजन को अचीव करने के लिए कंपनी के मिशंस क्या है, क्या शॉर्ट टर्म्स मिशंस क्या है। तो अगर उसको मालूम नहीं है वो काम कर रहा है जिस कंपनी में कि कंपनी कहाँ जा रही है, तो वो लगता है कि शायद मैं गलत जगह पे हूँ, आई शुड डू समथिंग बेटर। और इसके बाद वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडर पेड, सैलरीज कम है, मे बी ही कंपेयर्स हिमसेल्फ। फिर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज, आप हैरान होंगे सुन करके, बहुत स्ट्रक्चर तरीके से नहीं होते एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज, प्रॉपर टाइम पे नहीं होते, फेयर नहीं होते, ऑल्सो यू नो ब्रिंग्स इन सम नेगेटिविटी इन द पर्सन। फिर आदमी को अपने प्रॉब्लम्स मालूम है, वो कोशिश करता है मैं इनको रिजोल्व करूं अपने सीनियर से मिल करके, सपोर्ट उसको अगर नहीं मिलता तब भी ऐसा सोचता है कि भाई शायद कंपनी सही नहीं मेरे लिए। एंड फिर एक इम्पोर्टेंट चीज है कि काम तो मेरे पास है लेकिन मेरे लिए चैलेंजिंग ही नहीं है काम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कोवर्कर से रिलेशनशिप
जी
ठीक नहीं है, बिकॉज काम जो करना है बॉस के साथ तो कुछ देर बात करनी है लेकिन कोवर्कर से तो सारा टाइम रहना है, अकेले तो काम कर नहीं सकते। टीम दैट वर्क्स, वेरियस रीजंस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि एम्प्लॉय को सोचने के लिए कि शायद मैं सही जगह पे नहीं हूँ और मुझे ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए अपने करियर के लिए।
जी, जैसे कि अभी बीच में आपने बात की कि जो नेगेटिविटी आने लगती है और इन सबसे नेगेटिविटी आती है, आगे और भी कुछ बातें आपके साथ करूंगी विजय जी कि एम्प्लॉयर की तरफ से भी यही कुछ बात आती है। उससे पहले एक बात और पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी किताब में 3 लॉज ऑफ पॉजिटिविटी बताई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो क्या है।
हाँ जी, पहले तो मैं एक थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी दे दूं कि ये जैसे नेगेटिविटी जो आने लग जाती है ये कई बार एम्प्लॉय की परसेप्शन भी हो सकती है, सच्चाई भी नहीं हो सकती। तो मैंने ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि जॉब छोड़ दें, मैंने इसमें सजेस्ट किया कि अपनी सिचुएशन को असेस करें। ठीक है, उसके लिए भी मैंने उसमें गाइडलाइंस दी है कि आप देखिए हो सकता है आप जो सोच रहे हो सही ना हो,
बिल्कुल
है ना, ये आप अपनी परसेप्शन सही करिए फिर एक डिसीजन लीजिए जाने के लिए। और उसके साथ साथ फिर पॉजिटिविटी जो मैंने देखा है, मैंने एनालाइज किया पॉजिटिविटी को, तो मेरे को समझ में आया, मैंने इसके 3 लॉ बना दिए पॉजिटिविटी के। इसमें मैंने लिखा है कि फर्स्ट लॉ जो है, इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ पहले फिर हिंदी में बताऊंगा। व्हेन पॉजिटिविटी इज प्रॉपरली हार्वेस्ट एंड मेड अ डेली हैबिट इट ड्राइव्स अप नेगेटिविटी। कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हूँ और थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हूँ। ये एक डेली हैबिट के तौर पर पॉजिटिविटी एडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, हर चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से ही देखना पड़ेगा और देखना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि एक हमारे में पॉजिटिविटी बिल्डअप हो, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, पॉजिटिविटी इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ नेगेटिविटी, इट इज द एब्सेंस ऑफ नेगेटिविटी। मैंने इसको मेरे हिसाब से जो पॉजिटिविटी की पिक्चर है उसमें कहीं नेगेटिविटी दिखती ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव अगर +10 है तो नेगेटिविटी -10 है, लेकिन दिख तो रही है। मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी का मतलब नेगेटिविटी दिख ही नहीं रही। थर्ड लॉ इज मेनी नेगेटिव्स कैन नॉट बी वॉश्ड ऑफ विद वन पॉजिटिव, द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी एक पॉजिटिव थॉट से सारे नेगेटिव थॉट हट नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली ऐसा है कि मैं मेरे पास अगर बहुत सारे पॉजिटिव थॉट है, एक नेगेटिव थॉट से सारे पॉजिटिव थॉट को खत्म कर सकता हूँ। तो नेगेटिविटी प्रिवेलेंट है, उसको खत्म करने के लिए पॉजिटिविटी को हमें इस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए।
विजय जी, हम बात कर रहे थे 3 लॉज ऑफ पॉजिटिविटी जो आपने अपनी किताब में उनके बारे में बताया। उसको बताने से पहले आप ये भी बता रहे थे कि जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉई के दिमाग में जो नेगेटिविटी आई है वो सही तौर पर है, हो सकता है ये उसका ख्याल ही हो। आपने 3 लॉज ऑफ नेगेटिविटी बनाए हैं, उसके बारे में भी जानना चाहूंगी आपसे।
हाँ जी, मैंने जो 3 लॉ बनाए हैं उसमें जो पहला लॉ है नेगेटिविटी का कि नेगेटिविटी ट्रेवल्स मेनी टाइम्स फास्टर देन पॉजिटिविटी एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय डायरेक्शन और ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब बेसिकली यही है कि कुछ भी जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इंडस्ट्री से ही बात करूं या कोई एम्प्लॉय जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उधर से बात करूं, कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी स्प्रेड होती है। और जब मैं इसमें कह रहा हूँ तो पॉजिटिविटी के कंपैरिजन में एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय डायरेक्शन और ऑल्टीट्यूड, अगर मैं उसको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, डायरेक्शन यानी वो हर डिपार्टमेंट में और ऑल्टीट्यूड का मतलब हर लेवल ऑफ एम्प्लॉय में, वो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है, बनिस्बत इसके कि पॉजिटिविटी पहुंचे, तो इससे सतर्क रहना चाहिए। परसेप्शन जो मैं आपसे कह रहा था, एम्प्लॉय को अपने बारे में परसेप्शन हो जाती कि मैं जहां काम कर रहा हूं मुझे ये सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी आती है उसको बस सतर्क रहना चाहिए कि मैं इसको एसेस तो करूं इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में नेगेटिव है या नहीं। सेकेंड लॉ जो है, नेगेटिव इज मच मोर डोमिनेंट देन पॉजिटिविटी एंड देयरफॉर मच मोर एक्सेप्टेबल टू पीपल। ये मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लोग जल्दी बिलीव करते हैं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में। कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी लोग विश्वास करते हैं उससे ज्यादा, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पे विश्वास वेरीफाई करके करते हैं। तीसरा जो लॉ है, मेनी पॉजिटिव कैन बी वॉश्ड ऑफ विद वन नेगेटिव, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कितना ही हमने अच्छा काम किया हो, कितने ही साल हमने अच्छा काम किया हो, एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है हमारे बहुत सारे अच्छे काम को खत्म कर सकती है।
जी।
तो ये मैंने कहा है, इससे सतर्क रहना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए।
जी, और उस नेगेटिविटी के सामने जो आपके 3 लॉज ऑफ पॉजिटिविटी हैं, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। और यही बात लागू होती है जो आपकी किताब का जो टाइटल है, क्विट डोंट जस्ट सिट, एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी, यानी एम्प्लॉयर्स को भी अपनी कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा।
जी जी,
तो
जी बिल्कुल, ये दोनों के लिए ही है, क्योंकि हर एम्प्लॉयर डेफिनेटली चाहता है कि वो और ग्रो करे, उसके एम्प्लॉयज और अच्छा करें, उसका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करे, लेकिन शायद वो उस तरीके से नहीं चल पाता किसी भी वजह से, कि ये सब हो सके। तो उनको ये रियलाइज करना आज की तारीख में जरूरी है, क्योंकि आज की जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेक्टेशंस हैं आज की जनरेशन की और आज के एम्प्लॉयज की, उनमें फर्क आ चुका है। वो मांग रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, वो मांग रहे हैं मोर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा वर्क ऑफ इंटरेस्ट, और वो मांग रहे हैं जिसके हिसाब से वो काम करते हैं उसके हिसाब से सैलरीज, उसके हिसाब से पैट ऑन द बैक, ये चीजें वो मांग रहे हैं, जो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स इन चीज को शायद नहीं देख रहे। और मैंने इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कुछ ऑर्थोडॉक्स स्टाइल से और अपनी कंपनीज चलाते हैं, यू नो दे हैव मेनी ऑफ देम सॉरी टू से हैव अ फीलिंग दैट दे आर ओब्लाइजिंग पीपल बाय गिविंग देम जॉब्स। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आजकल चेंज हो रहा है, एक टाइम पे सही था, वो पैटर्नल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस थी जहां पे द ओनर वाज लाइक अ फादर फिगर एंड ऑल द पीपल वर चिल्ड्रन, सो इट्स चेंजिंग टू द मोर यू नो कॉर्पोरेट स्टाइल, तो भी एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है। तो एम्प्लॉयर्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि दे नीड टू चेंज, चेंजिंग टाइम्स, बहुत जल्दी ये नया जो जनरेशन है इसके थॉट प्रोसेस से इंडस्ट्री में वर्किंग में चेंज आने वाला है।
जी,
ये एम्प्लॉयर्स के लिए।
जी विजय जी, ये तो किताब की बात हुई, लेकिन जो कवर है वो एक आर्टिस्ट की बात है, और उसको आपने खुद ही डिजाइन किया है, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि उसके पीछे क्या सोच रही।
हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैं इनफैक्ट सोच रहा था कि कुछ एक्सप्लेन करूं। ये आप देखेंगे इसमें एक एग्जीक्यूटिव है जो बैठा हुआ है
जी,
ठीक है, और इसके पीछे सुपरमैन का केप है, और सुपरमैन जो है ही शुड नॉट से ही शुड फ्लाई, और सामने अगर आप देखें तो बड़ा उजाला सा है, पूरी रोशनी है
जी,
मतलब अपॉर्चुनिटी है। तो सुपरमैन एन एग्जीक्यूटिव है सुपरमैन, और उसको बैठना नहीं चाहिए, सामने उजाला है, अपॉर्चुनिटी है, इसकी टेक टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, फाइंड द बेस्ट फिट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और उसका फायदा उठाए। तो उसका कवर इस हिसाब से डिजाइन
जी, तो एक मैनेजमेंट जॉनरा की बुक के अंदर कितना फिलोसोफिकल थॉट गया हुआ है वो बहुत ही अच्छा लगा जान के। और एक बात अब आखिर में ये पूछना चाहूंगी कि आप ये किताब लिखेंगे, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
ये मुझे करीब ऑलमोस्ट 40 साल इंडस्ट्री में हो गए
जी,
मेरे गाइड्स, मेरे मेंटर्स, मेरे कोलीग्स सब अच्छे रहे, दिमाग में रहा कि जो सीख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उसको मुझे वापस भी देना चाहिए लोगों को सिखाने के लिए। तो जब तक मैं जॉब में था तो मैं सोचता था कि मैं टेक्निकल किताब लिखूंगा, इंटरेस्टेड इन राइटिंग है कि ऑफकोर्स जॉब्स में लिखना पड़ता है, इंजीनियर्स बहुत लिखते हैं, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ राइटिंग समथिंग तो मुझे ध्यान में आया कि आज इंडस्ट्री इतनी चेंज हो रही है, तो उसमें एक नीड है एक इंडस्ट्री को चेंज करने की, इंडस्ट्री के थॉट प्रोसेस को चेंज करने की, और इसीलिए मैं सोचा कि ये एक मैसेज है जो मैं दे सकता हूँ लोगों को। और इनफैक्ट मैंने इससे लिंक 2-3 मैसेजेस मेरे और हैं जो मैं अपनी सब्सिक्वेंट बुक्स में डालना चाहता हूँ इसी पैटर्न को लिंक करते हुए।
अच्छा,
तो ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग ऑन द सेकेंड वन, इट रिलेटेड, ये तो कंपनी के बारे में था, इट इज अबाउट द एम्प्लॉयज व्हाट दे थिंक, सो सेकेंड इज रिलेटेड टू ईगो, how ego plays an important role in the managing of a company or in the work, because log company mein baat karte return on investment, right? Company chalti hai, lekin maine ye dekha hai कि नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनीज रन ऑन रिटर्न ऑन ईगो आरओई. आई टेंटेटिवली नेम्ड माय सेकंड बुक आरओई ईगो ट्री. आई वांट टू राइट थ्री बुक्स टू कंप्लीट दिस साइकिल. थर्ड वुड बी ऑन द लीडरशिप दैट्स रिक्वायर्ड नाउअडेज द रेजिलिएंट लीडरशिप. यू नो रेजिलियंस बहुत चाहिए. इट इज अ होलिस्टिक टाइप ऑफ मैनेजमेंट. अप्रोच यहाँ से मतलब आप समझिए कि प्रेरणा इस टाइप से मुझे मिली है.
बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके विजय जी, और आपकी दोनों आगे आने वाली किताबों की इंतजार भी रहेगी, और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी.
थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.